पुस्तक पहिली
लेक्चर नंबर 18 ओम नमः सिद्धे विशुद्ध बुद्धि अलथ सौवत्था त्रिभुवन शिरसे हरया पश्यन्त भंडारया सौवे।
यह श्री भगवान भूत बलि भट्टारक प्रणीत महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जिसका दूसरा नाम है महाधवल। उसमें प्रथम पुस्तक जो है उसमें पहला जो प्रकृति बंध अधिकार को देखते हुए हम पृष्ठ संख्या 72 पर आ गए। 72 अपनी यहाँ बात बंध के प्रकरण की बात चल रही। प्रकृति बंध ये अधिकार का नाम है। प्रकृतियों का बंध होता है तो कौन कौन से प्रकृतियों का बंध होता है उसकी बात हमने देखी। अब कोई किसी विशिष्ट प्रकृति का बंध किसी एक जीव को लगातार कितने काल तक हो सकता है, कम से कम कितने काल तक होगा और अधिक से अधिक कितने काल तक होगा, ये भी बात हमने देखी। क्योंकि कितनी ही प्रकृतियां कैसी होती है उसको कहेंगे ध्रुव बंधी। जैसे ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियां हैं, वो हर जीव को अनादि से हर समय बंध रही है। कब तक बंधेगी कि तो 10वें गुणस्थान के अंतिम समय तक बंधेगी। तो कंटिन्यूस हर जीव समय दृष्टि हुआ मुनि हुए तो भी ये बंध ही रही है, तो उसको कहेंगे वो बंध रही है। अभव्य जो जीव है जो कभी सम्यक तो प्राप्त नहीं करेंगे उसको कहेंगे वो अनादि से अनंत काल तक बनती है। भव्य जीव है जो 10वां गुणस्थान पार करके आगे जाएंगे तो उसको कहेंगे अनादि से थी अभी शांत हुए, एंड हो गया उसका, सो अंत निशांत उसको कहेंगे। और ऐसा भी हो सकता है उपशम श्रेणी चढ़ा, उपशम श्रेणी याद है, यानी 11वें गुणस्थान में गए, 10वें तक बंद था, 11वें में गए तो बंद नहीं था, वापस 10वें में तो बंद शुरू हुआ, तभी उसको स्टार्टिंग पॉइंट हुआ वो, तो वहां से काल गिनेंगे। तो कोई ऐसा जीव भी है ना, 10वें में आया है और दोबारा श्रेणी चढ़ी तो फिर बंद रुक गया, तो अंतर मुहूर्त में हो सकता है मिनिमम, और मैक्सिमम काल अभी तो अनादि से हो रहे, परंतु एक बार उपशम श्रेणी चढ़ा हुआ जी मान लेते अभी 10वें में आया है, नीचे के गुणस्थानों में चला गया और उसको मोक्ष होने को अभी यानी मिथ्यात्व में भी चला गया, तो अर्ध पुद्गल परावर्तन में थोड़ा कम इतना काल हो सकता है। इसी तरह हर एक प्रकृति पर घटित किया था। उसके लिए ये भी जानना आवश्यक है कि कौन से प्रकृतियों की कहाँ बंध विच्छित्ति होती है, यानी कहाँ कौन से गुणस्थान तक बनते हैं, कहाँ आगे नहीं बनते, उस पर भी ये निर्भर है। दूसरी बात, कोई प्रकृति ऐसी है जिसको कहेंगे प्रतिपक्षी। प्रतिपक्षी यानी साता बंधेगी या साता, अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में चेंज हो जाता, कभी कभी एक सेकंड एक समय में भी चेंज हो सकता, तो कभी साता बंधेगी कभी असाता बंधेगी कभी साता बंधेगी, तो उसका लगातार लंबा काल नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारी प्रतिपक्षी प्रकृतियां हैं, जैसे हास्यरति बंधेगी या शोकरति बंधेगी। अब जो मिथ्या दृष्टि है तो उसके कोई ना कोई एक वेद बंधेगा अंतर्मूर्त तक, वो नियम से चेंज होगा ही होगा। इस तरह से ये अन्य अन्य प्रकृतियों का बंध काल कितना है लगातार, उसका यहाँ चल रहा है चैप्टर अपना। और ये बात मार्गणाओं में लगा रहे हैं, मार्गणाओं ने गति की अपेक्षा नर गति में क्या क्या होगा, देवगति में क्या होगा, फिर इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा एक इंद्रिय जीव में क्या है, दो इंद्रिय जीव में क्या है, पंच इंद्रिय में क्या है, उसकी भी बात हमने देखी। अब मार्गणाओं को देखते देखते हमने ज्ञान मार्गणा संयम मार्गणा की बात देखी थी, अब उसी के बारे में यहाँ जो 72 पृष्ठ पर हम नीचे से दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहे थे उसके ऊपर से भी शुरू करेंगे। खुद्दा बंध का कथन। संयम मार्गणा में बात चल रही थी, संयमियों के इन जनरल बात की, अब परिहार विशुद्धि की भी बात हमने कल देखी थी। अब यह हम ये कथन पढ़ेंगे तो ख्याल में आ जाएगा कि क्या बात चल रही है। सामान्यतया संयम, जब सामान्य संयम कहेंगे तो उसमें कोई भेद हमने नहीं गिना, तो जिस किसी संयमी में घटित होता है वहां कहेंगे सामान्य से संयम। फिर संयम के अलग अलग भेद करेंगे तो परिहार विशुद्धि संयम। परिहार विशुद्धि संयम किसको होता है याद है? हाँ, छठी सातवें में होता है, पर कौन से जीव को होता है? कुछ विशिष्ट ये संयम है। हाँ, 30 वर्ष तक सुखी गृहस्थ जीवन बिताया, फिर मणि दीक्षा अंगीकार की, केवली के ने पादमूल में, तीर्थंकर के पादमूल में, केवली के पादमूल में प्रत्याख्यान पूर्व का वहाँ अभ्यास किया 8 वर्ष तक, पृथक वर्ष तक, तो उनके परिहार विशुद्धि संयम प्राप्त होता है। हिंसा को टांग कर गमन वगैरह होता है उनका, यानी अन्य जो मुनिराज
है नहीं,
किसी को होता है, वो विशिष्ट विशुद्धि के कारण होता है उनकी अपनी कुछ योग्यता से। जैसे अवधि ज्ञान सबको तो नहीं होता है, मन परे ज्ञान सबको तो नहीं होता है, ऐसे ये भी सबको तो नहीं है, हर जीव को नहीं, प्रत्येक मुनिराज को नहीं होता।
तो प्राप्त कर लिया तो ऐसे भी जा सकता है ना छठे सातवें में?
हाँ, जा सकता है ना, यानी सातवें में जाके छठे में आएगा, परंतु वो कौन सा रेगुलर, यानी सामायिक छदोपस्थापना वाला संयम होगा, उनके परिहार विशुद्धि नहीं होगी। तो डायरेक्ट मुनि दीक्षा लेके उन्होंने ये अभ्यास किया प्रत्याख्यान पूर्वक। जो मुनिराज होते हैं वो वर्षा काल में गमन नहीं करते, और जहाँ जीव है जल है तो जल में से वहां से गमन नहीं करेंगे, क्योंकि वो जीवों की विराधना होती है। परंतु परिहार विशुद्धि वाले ऐसे हैं कि वो गमन करने पर भी उनके हिंसा नहीं होती, क्योंकि विशिष्ट अभ्यास किया है उन्होंने, तो ये विशेषता है उसकी। संयमासंयम सामान्य की अपेक्षा कहा गया है। महाबंध का प्रतिपादन संयम, परिहार विशुद्धि संयम, संयमासंयम में बंधने वाले प्रकृतियों की अपेक्षा किया है। जब हम संयम का काल कितना है पूछते हैं, परिहार विशुद्धि का काल कितना है, तो उस संयम का काल बताएंगे। और यहाँ बात कौन सी चल रही है, वो संयमी जीव विशिष्ट प्रकृतियों का बंध कितने काल तक करते है उसकी बात, तो उसमें थोड़ा डिफरेंस है। विशेष, अभी इसी में विशेषता बता रहे थे, ध्रुव प्रकृतियों का जघन्य बंध का लंतर मुहूर्त है। क्या कहा? ध्रुव प्रकृतियां कौन कौन सी याद है? मंजुबेन, हाँ, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मिथ्या। अभी इसमें मिथ्या तो नहीं है, फिर भी हम टोटल प्रकृति देख रहे, तो मिथ्या तो है, 16 कषाय है, भय जुगुप्सा है। अब नाम कर्म की बोलो, तेजस कारमाण, हम क्रम से कहेंगे तेजस कारमाण, वर्णादि चार, उच्छ्वास नहीं, निर्माण, कितने हैं नाम? फिर देखो देखो, ज्ञानावरण की 5, इसको ध्रुवबंदी कहते हैं, अने हर जीव को अनादि से बंध रही है, जब तक समय को प्राप्त कर ऊपर नहीं जाता तब तक बंधेगी बंधेगी, तो ज्ञानावरण की 5। अभी उनके लिए ये सभी नहीं घटित होगी, परिहार विशुद्धि वाले या संयमी छठे सातवें गुणस्थान वाले हैं, उनमें से 9 दर्शनावरण नहीं बंधेगी, उसमें से 6 बंधेगी, तो यथा योग्य समझना। पर ध्रुवबंदी की मैं अभी लिस्ट बता रही हूँ, तो 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, 5 अंतराय। ये कैसे याद करना, ये तो 19 हुई, अब मौन्य के भी 19 कहना, मिथ्यात्व, 16 कषाय और भयजुगुप्सा, 19 30 है। अभी कितने रहेगी? 9 नाम कर्म के। तो नाम कर्म के अभी आप लिख रहे हो, हाँ, तो तेजस, तेजस करते थे तेजस शरीर नाम कर्म, हा? तो हम उसको तेजस कर्मण शरीर कहेंगे। फिर वर्णादिचार्य ने वर्ण गंध रस स्पर्श, ये दो और चार छह हो गए। फिर अगुर लघु, उपघात और निर्माण, इन प्रकृतियों का बंध लगातार चलता रहता है। इनको कहते हैं ध्रुवबंधी प्रकृतियां। ध्रुवबंधी की डेफिनेशन ऐसी है, जब तक अपनी अपनी विच्छित्ति नहीं होती बंध की, तब तक लगातार हर समय बनती रहती है। क्या कहा? जब तक बंध की विच्छित्ति नहीं होती तब तक लगातार बनती रहती है। अब मिथ्यात्व की बंध विच्छित्ति कहाँ है? तेजल पहले में। तो जब तक जीव पहले गुणस्थान में लगातार वो बंध रहे, जीव ऊपर के गुणस्थानों में समय दृष्टि हो गया, बंध रुक गया, तो जब तक मिथ्यात्व में तब तक लगातार बनती है, फिर दोबारा बंधेगी। सोलह कषाय, सोलह कषाय ने अनंतानुबंधी चार, प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान चार, संज्वलन चार, ये तो मिथ्या दृष्टि को तो सभी की सभी बनती भाई। क्रोध करे तो भी सोलह बंधेगी, मान करे तो भी, माया करे तो भी, और लोभ करे तो भी, तो कौन सा अच्छा है? कोई भी अच्छा नहीं। इन्हें कोई भी कषाय रूप उसका उदय चल रहा है, उसका परिणाम चल रहा है, तो सोलह के सोलह बंधेगी मिथ्या तो में। फिर समय दृष्टि हो तो अनंतानुबंधी नहीं बंधेगी, बाकी बारह बंधेगी। पांचवें गुणस्थान में वह प्रत्याख्यान नहीं बंधेगी, बाकी आठ बंधेगी। मुनिराज हुए तो संज्वलन चार तो बंधेगी बंधेगी। इस तरह से जहां जिस गुणस्थान में जो बंध है ना, वो बंध विच्छित्ति को याद करके फिर हम उसको समझ सकते हैं। अभी यहां जो देख रहे हैं विशेष जो है, ध्रुव प्रकृतियों का जघन्य बंध काल अंतर्मूर्त है। हम संयमियों में देख रहे हैं, तो संयमियों में ध्रुव प्रकृतियों का बंध काल, जैसे ज्ञानावरण बंध रही है वहां उनके योग्य दर्शनावरण छह बंध रही है, या ऊपर के इसके बाद अगर हम देखेंगे आठवें के बाद तो चार बंध रही है, क्योंकि निद्रा प्रचला की भी बंध विच्छित्ति हो जाएगी, पर चार दर्शनावरण बंधेगी। तो कहते जघन्य बंध काल अंतर्मूर्त, यानी जहां उनकी विच्छित्ति होती उसके ऊपर के गुणस्थानों में गए, बाद में नीचे आए और फिर ऊपर गए। जब तक ऊपर गए तब तक बंध नहीं था, नीचे आए तो बंध होने लगा, फिर ऊपर के गुणस्थानों में गए तो फिर बंध रुक गया, तो अंतर्मूर्त जघन्य बंध काल होगा। संयम के रहते हुए कितनी ऐसी प्रकृतियां अन्य मार्गणाओं में जब हमने देखा, जैसे पुरुष वेद में वगैरह या स्त्री वेद में देखा था, कोई कोई ऐसी प्रकृतियां थी कि उपशम श्रेणी से उतर के एक समय में बंध किया और मरकर अन्यत्र चले गए, तो क्या वैसे यहां होगा? ज्ञानावरण का बंध हो रहा था, ग्यारहवें में गए बंध रुक गया, दसवें में आए और एक समय में मरे, तो क्या होगा? बंध चालू होगा, परंतु परंतु वो मार्गणा नहीं रहेगी ना संयम की, तब कहीं कहीं। हाँ, अब यहाँ क्या कहते हैं, ध्रुव प्रकृतियों का जघन्य बंध काल अंतर्मूर्त है, किंतु असंयतों में, अभी वो अन्य अपेक्षा से बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां तो उन्होंने कहां की बात की है, हाँ विशेषार्थ की अपेक्षा। असंयतों में ध्रुव प्रकृतियों का बंध काल मत्य ज्ञान के समान है। मत्य ज्ञान यानी मति अज्ञान, यानी कुमति ज्ञान, यानी मिथ्या दृष्टि का, उसका बंध काल कैसे है कि अभव्य में अनादि अनंत है वगैरह वगैरह हमने जो देखा था, वो उसमें घटित हो जाता। पुरुष वेद, अभी कौन सी प्रकृतियों के बंध की बात चल रही है अभी जो हम पढ़ रहे हैं? पुरुष वेद का बंध पंचेंद्रिय जाति, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक अंगोपांग, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहार गति, त्रसोचार, तेजल त्रसोचार यानी कौन सा? बहुत अच्छा, त्रस बादर पर्याप्त और प्रत्येक सुभोग सुस्वर आदेय और उच्च गोत्र का जघन्य बंध काल एक समय है। और उत्कृष्ट साधिक 33 सागर हैं। ये संयमा संयम में बात चल रही है क्या? हाँ, उत्कृष्ट साधिक 33 असंयत की बात चल रही है। देखो, असंयत यानी पहले से चौथे गुणस्थान तक के सभी असंयत है, यानी असंयत से असंयत सम्य दृष्टि को यहाँ नहीं रेफर कर रहे, इसलिए वो मति अज्ञान के समान वो ध्रुव प्रकृतियों की बात ली। अब अन्य जो प्रकृतियों की, अब कोई मिथ्या दृष्टि है तो पुरुष वेद का बंध लगातार अधिक से अधिक कितने काल तक चलेगा? मिथ्या दृष्टि अंतर्मूल तक, क्योंकि पलटते रहता है। अब लगातार अधिक काल तक करने वाला कौन सा होगा? तो सम्यक दृष्टि, क्योंकि नपुसक वेद पहले गुणस्थान वाला ही बांधता है, ऊपर का कोई नहीं बांधता। स्त्री वेद का बंध पहले दूसरे गुणस्थान वाले करेंगे, ऊपर नहीं करेंगे। तीसरे गुणस्थान के ऊपर वाले पुरुष वेद का ही बंध करेंगे नौवे गुणस्थान तक। तो लंबे काल तक जो सम्यक्त्व में रहा है उसको पुरुष वेद का बंध लगातार चल रहा है। तो कम से कम कितना बताया उन्होंने?
एक समय।
ये कम से कम जब एक समय कहते हैं तब वहां समय दृष्टि नहीं लेना है, तब कैसे लेना है? एक से चार गुणस्थान, क्योंकि एक समय में उसका चेंज हो सकता है।
पहले और दूसरे
गुणस्थान, एक से चार
मां असंयतन एक से चार गुणस्थान, और वहां जहां कहीं एक समय लागू होता है, अभी कहां लागू होगा? पहले दूसरे गुणस्थान में हो सकता है, एक समय में चेंज हो गया। मेरे कैसे चेंज हो गया? जैसे कोई किसी अन्य वेद का बंध कर रहा था, एक समय में वो चेंज हो सकता है परिणाम के कारण, क्योंकि दूसरा वहां कोई ले नहीं सकते। अब उत्कृष्ट कितने काल तक चलेगा? तो साधिक 33 सागर, यानी साधिक 33 सागर वो पुरुष वेद का बंध कर रहा है, तो ये कहाँ हो सकता है? सम्यक दृष्टि है, सर्वार्थ सिद्धि वाले देव। 33 सागर तक सम्यक दृष्टि रहे, और वहां जाने के पहले तो वो संयम ही है। यहाँ असंयत को लेना है तो बाद में लेना है, माँ के पेट में आए तो 8 वर्ष तक तो संयम धारण नहीं करेंगे, उसको और लंबाते हैं, तो साधिक में ले लिया। साधिक 33 सागर तक पुरुष वेद का ही बंध कर रहे हैं। अब वहां तो वो मनुष्य गति बांध रहे, यहाँ गति की बात नहीं उठाई उन्होंने, पुरुष वेद की, पंचेंद्रिय जाति की, अन्य अन्य प्रकृतियों की बात ली। ये प्रकृतियां लगातार बांधने वाला सम्यक दृष्टि है, असंयत है। देखो देखो, 33 सागर चौथे गुणस्थान में रखना है असंयत में, परंतु वहां जाने वाला जीव कौन से? भावलिंगी मुनिराज है, यानी छठी सातवें गुणस्थान के ऊपर वाले हैं, तो वो वहां चले जाते हैं, तो वो संयम वाले हैं, उनको पहले तो नहीं काउंट कर सकते, वो काल संयमियों का था, हमें असंयत में लगातार बंध देखना है। तो वहां देव में गए तो चौथा गुणस्थान है, 33 सागर तक चौथे में रहे, मरकर अभी माँ के गर्भ में आए, गुणस्थान कौन सा होगा? चौथा ही। कब तक? 8 साल तक तो नियम से चौथा, 8 साल तक कोई भी मनुष्य ना सम्यक तो प्राप्त कर, अभी वो तो सम्यक दृष्टि पहले से थे, नया सम्यक तो प्राप्त करना है तो 8 साल के बाद, 8 साल का बच्चा भी सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, संहिता संयत हो सकता है, संयम धारण कर सकता है, केवल ज्ञान हो सकता है। कैसे होगा? 8 साल और कुछ अंतर्मूर्त बीत गए और केवल ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसलिए ये साधिक 33 सागर, समझ में? साधिक 33 सागर देव में, और यहाँ फिर आ गए मनुष्य में, तो जितना संयम प्राप्त करने के पूर्व तक का काल ले लेना उसमें। तिर्यंच त्रिक, यानी ये तिर्यंच गति त्रिक, इसका अर्थ क्या देखा था, याद है? हाँ बोलो। ये इंद्रियांच्या त्रिक का बंद करने वाले जी मनुष्य गति वज्र ऋषभ नाराच सहनन मनुष्यानुपूर्वी देवगति चार आयु तथा तीर्थंकर का ओघ के समान काल है। असंयतों में बात चल रही है, असंयत ने पहले, क्योंकि तिरंज गति का बंद कौन करेंगे, पहले दूसरे गुणस्थान वाले, ऊपर वाले तो नहीं करेंगे, उसके बंद विचित्ति होती है, तो तिरंज गति का लगातार बंद होता रहे। जैसे कोई मिथ्या दृष्टि जो है वो तो कभी तिरंज गति का करता है, कभी मनुष्य गति का करता है, कभी देव गति का, कभी नर गति का, कौन मनुष्य और तिरंज। अब ये ऐसा जीव है कि लगातार तिरंज गति का बंद कर रहा है। बोलो नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण काल तक अग्नि का एक जीव और वायु का एक जीव तिरंज गति का ही बंद करते, तो लगातार अग्नि का एक मर के अग्नि का एक, अग्नि का एक मर के अग्नि का एक, अग्नि का एक मर के अग्नि का एक होता रहे तो कितने काल तक होता है, तो कहते असंख्यात लोक प्रमाण काल तक। आप कहेंगे असंख्यात लोक तो क्षेत्र का माप है, और उतना काल कह रहे हैं, जैसे हमने पहले ना कहा अंगुल है नहीं इतना, उसका असंख्यात वा भाग दिखे का भी नहीं, उतने अगर हम प्रदेश उतना क्षेत्र लेंगे तो उसमें इतने प्रदेश होते हैं। अभी प्रदेशों की संख्या को हम कन्वर्ट करेंगे समयों में, नंबर ऑफ प्रदेश के बदले उतने ही हम नंबर ऑफ समय काउंट करेंगे, तो मालूम है इतने से में कितने समय हो गए, असंख्याता संख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, एक अवसर्पिणी उत्सर्पिणी पूरा होने के लिए 20 कोड़ा कोड़ी सागर लगते, ऐसे एक दो चार नहीं, केवल असंख्यात भी नहीं, क्योंकि वो परिता संख्यात छोटा असंख्यात होता है, फिर युक्ता संख्यात उससे बहुत बड़ा होता है, फिर असंख्याता संख्यात, तो ऐसे भी कोई मध्यम असंख्याता संख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, कितने अंगुल के असंख्यात भाग क्षेत्र में प्रदेश है उसकी। अब यहाँ कितना काल बताया अग्नि का एकों में लगातार रहने का, पूरा लोक में कितने प्रदेश हो गए, अंगुल के असंख्यात भाग में इतने, तो पूरे लोक में कितने, ऐसे एक लोक नहीं असंख्यात लोक, तो वो कितना बड़ा काल होगा, तो इतने फिर भी उसको असंख्यात कहेंगे, अनंत नहीं कहेंगे। इतने लंबे काल तक जीव अग्नि का एक वायु का एकों में घूमता रहेगा तो वो जीव तो मनुष्य गति बांध नहीं सकते, उल्टा सत्ता में मनुष्य गति हो तो उसकी उद्वेल न करते। तो लगातार तिरंज गति बांधने वाले कौन है जीव अग्नि का एक वायु का, तो उसका उत्कृष्ट काल कितना होगा असंख्यात लोक। देखो ख्याल में आती जीवों के परिणामों की विचित्रता, और ये ऐसे सब पर्याय हम अनंत बार कर चुके हैं। हम मनुष्य में आए हैं, मनुष्य गति की दुर्लभता मनुष्य पर्याय की हमारे ख्याल में नहीं आती है, और इस पर्याय में आकर भी हम क्या करें, अरे मनुष्य पर्याय पाई है, अभी मौज मस्ती करें, नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे, अभी हमारे दिन कैसे है मौज करने के, क्यों बूढ़े हो जाएंगे हमारे जैसे तो करेंगे स्वाध्याय, है कि नहीं, लगता है कि नहीं ऐसा, परंतु हमें पता नहीं एक एक समय का कितना अलौकिक है ये जीवन, कि हम इसका अगर सही रीति से अपने को पहचानना है और कुछ नहीं करना, दुनिया के लिए करना नहीं, कर सकते ही नहीं है, कर सकते नहीं फिर भी उसी में माथा मारते, ना किसी का बुरा कर सकते ना किसी का भला कर सकते, ये तो जीव की ऐसी मिथ्या मान्यता है कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं नहीं भोगूं तो क्या होगा उसका, है ना।
तो ये तीर्यज गति में जो जीव है तो कैसे बाहर कैसे
यानी अन्य परिणाम, क्योंकि वो तिरंज गति के जीव भी मनुष्य गति बांधते हैं, बाहर आ जाते हैं, और पंच इंद्रिय तिरंज है वो देव गति भी बांध सकते हैं, नरक गति भी बांध सकते हैं, सातवें नरक तक जा सकते हैं, और सोलहवें स्वर वहां भी सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं तिरंज जी, असंख्यात तिरंज सम्यक दृष्टि है, तो मनुष्यों को ये दुर्लभ होगा क्या प्राप्त करना, हमारे पास तो कितने साधन उपलब्ध हैं, आज के जमाने में तो कितने पुस्तकें छपी है, सीडीज उपलब्ध है ना, गुरुदेव के प्रवचन है, क्या क्या है, नहीं है कितना सब है। जो करना चाहता है उसके लिए सब कुछ साधन है, निमित्त के लिए गुरु का ही नहीं है कोई जीव।
हाँ,
उन्होंने मन से आपने जान लिया उनका प्रश्न। तो मैं मुझे कहो मन किसमें निमित्त है, बोलो अश्विन भाई, आप उनके लिए उत्तर दे दो। मन का कार्य क्या है? मन का कार्य क्या है? हाँ, मति ज्ञान में निमित्त है ना, यानी पुराने का स्मरण करना, जो सुना है उसका सही अर्थ भाषित होना, फिर वो ये सही है कि गलत है इस पर निर्णय करना, ये मन का कार्य है। मन का कार्य राग द्वेष करना नहीं है। अभी हम आंखों की बात करें, आंखों के द्वारा हमने देखा तो आंख ने राग द्वेष कराया कि नहीं कराया? आंख ने तो देखने का कार्य किया, फिर उसमें जो राग द्वेष कर रहे हैं वो चारित्र गुण की पर्याय है। हम मन के द्वारा भी उस पर सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मन ने राग द्वेष किए, मन ने नहीं किए। मन के द्वारा तो जानने का ही कार्य, हमें पुराने स्मरण हुआ या जो हमने कुछ उसमें तो हितहित कव्यक आदि बातें होती है, स्मरण आदि बातें होती है, परंतु जो अरे ये क्या अच्छा नहीं है, दूसरा अच्छा है, वो ग्रीन अच्छा है, ये कौन कर रहे हैं? ये यहाँ चारित्र मोह उसका चल रहा है। इष्ट अनिष्टता, पहले में इष्ट अनिष्टता उसके मिथ्यात्व के कारण भाषित होती, और फिर उसमें राग द्वेष, इष्ट लगे उसमें राग, अनिष्ट लगे उसमें द्वेष, यहाँ चारित्र मोह चालू हो जाए, यानी वो सब जाके ये अंत में मिथ्यात्व के ऊपर ही आ जाएगा सारा दोष। उल्टी मान्यता, तो यहाँ क्या देख रहे, ये इसलिए इतना सारा पता चलता है कि जीव ने कितने कितने पर्यायों में कैसा कैसा काल बिताया है, उसका विचार भी करें, और ये सब हमने, ये हमारे पास्ट हिस्ट्री है, विचार है वो जीव, ऐसा मत सोचना आपके कैसे भाव किए होंगे। तो हम तीर्यंचों में असंख्यात भाव करके आए हैं, तो हम कैसे भाव करके आए यहाँ मनुष्य में, याद है आपको? आप भी
करके
शुभ भाव करके आए होंगे, तो वहाँ कौन सा शुभ भाव किया? मंदिर में गए कि घंट बजाई, कितना दान दिया?
वहाँ तो कुछ हो सकता नहीं है, तो इसलिए हमारे जो राग द्वेष,
वहाँ पर भी इन विशुद्धताएं और संकलेश परिणाम जो होते हैं उसके कारण यथा योग्य बंध होता, वो परिणाम हम यहाँ पर भी सोच समझकर नहीं कर सकते, पर मानते हैं कि हमने किया तो आए। देखो आप सुबह, आप कल शाम को आपने नक्की किया इसलिए आज यहाँ आए कि नहीं आए? और यहाँ बैठे बैठे वहाँ याद आती है कि आज बच्चा आने वाला है, तो वो सहज आ गया। हाँ, और यहाँ आने का कार्य आपने सोच समझ करके है ना? हाँ हाँ, वो इसका हम समझते है, बहुत अच्छा। हमें क्या लगता है, शुभ भाव तो हमने सोच समझ कर किया, पुरुषार्थ से किया, उसमें पुरुषार्थ लगा था अपने, और अशुभ हम नहीं चाहते फिर भी आते, क्या करें। ये हमारी मान्यता, अभिप्राय हमारा दोष है। चलो अभी हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ तो अपना प्रकरण क्या चल रहा था। तिर्यंच गति का लगातार बंध होता है तो असंख्यात लोक प्रमाण काल तक, अभी यहाँ तो लिखा है ओग के समान, ये हमने पहले पढ़ा था इसलिए आपको बताया, और कम से कम एक समय की भी हो सकती है ना, एक समय के लिए गति बांधी, दूसरे समय में दूसरी गति बांधी, ऐसा भी हो सकता है। देखो गति जो नाम कर्म का भेद है, और जो आयु है वो अलग बात है, आयु का बंध कभी कभी होता है, वन थर्ड आयु बाकी है तभी, परंतु गति अभी मिथ्या दृष्टि जीव है तो 24 घंटे में सुबह से फिर दोपहर रात भर और दूसरे सुबह तक कभी तिरंज गति बांध रहा है, कभी देव गति बांध रहा है, कभी नर गति बांध रहा है, कभी मनुष्य गति बांध रहा है, चारों ही चलते रहते, चक्कर 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 उसका, क्योंकि परिणाम एक जैसे रहते नहीं है, चेंज होते रहते हैं, उसमें भी कभी संकलेश विशुद्धि होती है, कभी शुभ अशुभ भाव होते रहते हैं, तो अलग अलग गतियों का बंध होता है। कोई भी लगातार 24 घंटे गति नहीं बांध रहा, वो कब होगा, सम्यक दृष्टि हो जाएगा तो लगातार देव गति बांधेगा, उसकी बात यहाँ नहीं है। मिथ्या दृष्टि तो चारों गति का ऑप्शन है, और वो चारों गतियों में अंतर्मुख से ज्यादा कहीं किसी गति का बंध नहीं होगा, उसे नियम से परिणाम चेंज हो गई हो। तो यहाँ क्या बात हो रही है देखो, तीर्यंच गति त्रिक वो पहले बता चुके हैं, इसलिए इतना उसका लगातार बंद होगा। अब हम मनुष्य गति की बात करते हैं, वहां तो हमने मिथ्या दृष्टि और वो अग्नि वायु लिया लगातार बंद करने वाले। अब मनुष्य गति का मिनिमम बंद काल यानी एक समय तक हो सकता है, और अभी हमें सोचना है जरा, ये बाकी लोग पहले सोचेंगे फिर लास्ट में आपके पास आएंगे अश्विन भाई, कि कोई मनुष्य गति का लगातार बंद कर रहा है तो लंबे से लंबे कितने काल तक करेगा। मंजू भाई लगातार मनुष्य गति ही बांध रहा है अंतर्मुख, हम मिथ्या दृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी जीव ऐसा हमने कहा। पूर्व कोटि तीन पल्ल्य वहां तो देव गति बांध रहा है, क्या बांध रहा है? बहुत अच्छा, 33 सागर सर्वा सिद्धि वाला देव, वह तो सारे समय दृष्टि होते हैं और लगातार मनुष्य गति बांधे। नारकी भी समय दृष्टि बांधता है परंतु वो सम्यक्त्व के साथ जाता नहीं है, सम्यक्त्व के साथ वहां से निकलता नहीं है, सातवें नरक का वो कुछ कम हो जाता है, पर सर्वार सिद्धि वाले लगातार मनुष्य गति का बंद करेंगे। ये मनुष्य गति की बात है, 33 सागर साधिक नहीं होगा उसमें, क्योंकि वही जो मनुष्य में आते ही देवगति बांधना चालू करेगी। ये ऐसा ऐसा अटपटा कर्मों का, कौन सा बंध होता है क्या होता है ये सब निश्चित होते हैं, उसके नियम है सब। वज्र वृषभ नाराज सहन ये भी वो मनुष्य गति के साथ बांध रहे ना, वही जीव वही होगा, मनुष्यानुपूर्वी भी उसके साथ बनती है। अब देव गति का लगातार बंध हम लंबे की सोचते हैं, क्योंकि एक समय तो जघन्य काल सब जगह घटित होता है, भोग भूमि में आप क्या कहते हैं? बहुत अच्छा, पूर्व कोटि पूरा नहीं लेना, देखो कैसे लेना है। अभी कोई जीव भोग भूमि का है, देव गति लगातार बांधने वाला जीव कौन है? भोग भूमि वाला, परंतु भोग भूमि वाला सम्यक दृष्टि लेंगे तो यानी पहले समय से बांध रहा है। अब वहां जो सम्यक्त्व के साथ जाने वाला है, भोग भूमि का जो जीव सम्यक्त्व के साथ जाने वाला है, वो क्षायिक समय दृष्टि होना चाहिए। सम्यक्त्व इससे आते हैं, मनुष्य में से सम्यक्त्व लेके गया है, तो मनुष्य में यहाँ पर भी कर्म भूमि का मनुष्य था तब भी देवगति बांध रहा था, और वहां भोग भूमि का मनुष्य हुआ तब भी देवगति बांध रहा है। तब ये कर्म भूमि से में यहां से गया है तो यहां उसको सम्यक्त्व प्राप्त कराना है, तो बहुत जल्दी आठवें साल में सम्यक्त्व तो प्राप्त हो सकता है। आयु बंध के पहले सम्यक्त्व प्राप्त करता तो देवायु बांधता। अब इसलिए क्या करना, पहले मनुष्यायु का बंध करके बाद में समय दृष्टि बनाना उसको। तो आयु का अर्लीस्ट बंध कब होगा पूर्व कोटि वाले के? 1/3 पूर्व कोटि बाकी है, तभी 2/3 पूर्व कोटि बीत गई, 1/3 बाकी है, तब उसने मनुष्य आयु बांधी। आयु बांधती है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, आयु वही की वही, वहां उसको जाना पड़ेगा। अब ऑर्डिनरी मनुष्य आयु कोई बांधता है और बाद में सम्यक दृष्टि भी हुआ, फिर भी अगर क्षायिक नहीं होता तो सम्यक के साथ भोग भूमि में नहीं जाएगा, यानी पहले मनुष्य आयु बांधी फिर सम्यक दृष्टि हुआ फिर उसने क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त किया। अब वो मरकर वहां यानी वो सम्यक्त्व हुआ तब से लेकर वो देवगति का बंद कर रहा था हर समय, अब वो वहां भोग भूमि में गया वहां भी देवगति बांध रहे, तो वहां की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 3 पल्ल्य, और यहाँ पूर्व कोटि का 1/3, तो इतने काल तक लगातार देवगति का बंध किसी जीव को होता है। 4 आयु, हाँ तो अंतर्मूर्त तक बनती है कम से कम भी और अधिक से अधिक भी, कोई एक समय में आयु बांधे और फिर रुक गया ऐसा नहीं हो सकता। तथा तीर्थंकर का के समान काल है, तीर्थंकर प्रकृति मैक्सिमम अगर बंधेगी तो एक समय तो नहीं होगी जघन्य, तो अंतर्मूर्त तो बंधेगी और वो भी यहाँ किसी मार्गना की अपेक्षा हम बात करेंगे तो, या अंतर्मूर्त कैसे घटित किया था जघन्य काल, उपशम श्रेणी पर चढ़ा, 8वें के ऊपर गया तो बंध रुक गया, फिर नीचे आया तो बंध शुरू हुआ, फिर दोबारा श्रेणी चढ़ी तो अंतर्मूर्त घटित होगा। लंबे काल तक कोई तीर्थंकर प्रकृति बांधता रहे तो कैसे लेना। हाँ मनुष्य में बांधना शुरू हुआ। हाँ अपन नरक में मैक्सिमम कितना काल जाएगा? साधिक तीन सागर। हमें अधिक से अधिक आयु वाला करना है ना, उसको लगातार 33 सागर में भेजना। हाँ तो यहाँ पहला पूर्व कोटि का भव है, 8वें साल में उसने मान लेते, उसके बाद तीर्थंकर प्रकृति बांधने शुरू की, फिर संयमी होकर 33 सागर में गए, वहां से फिर मनुष्य में आए पूर्व कोटि वाले, और उस भव में तीर्थंकर हो जाएंगे वो। तो बंदे कब तक है? अब वो 13वें गुणस्थान का काल छोड़ दो, तो जन्म से तो बांध रहे थे, 8वें गुणस्थान तक बांध देंगे तो यथा योग्य उसका काल। गए ना 33 सागर में, नरक में पहले नरक में जा सकते, दूसरे तीसरे में भी जा सकते मिथ्या दृष्टि होकर, परंतु वो बीच में तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुक जाएगा। तो उसके सम्यक तो के साथ अगर भेजेंगे पहले नरक में, तो कुछ कम 1 सागर उनकी आयु होगी वहां की, पूरी 1 सागर भी पूरी नहीं होती है, कुछ कम 1 सागर होती है। तो हम लंबे आयु वाले सर्वार सिद्धि में वहां भेजेंगे उनको। हाँ मुनि, परंतु अपने मार्गणा तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध है, जिस मार्गणा में हो रहा है वहां हम घटित करेंगे। असंयतों में घटित, पर असंयतों में अगर घटित करना है तो ये घटित नहीं होगा। हम वापस उस पर आते हैं, असंयमियों में घटित करना है तीर्थंकर प्रकृति का लगातार बंध, तो क्या करना है? असंयमी कहाँ तक जा सकते हैं? वहां से शुरू करना असंयम, पहले संयम ही थे, नहीं समझे? संयम में वहां गए पर वहां असंयम ही रहे ना, तो वहां से शुरू करना। बंध वाले यहाँ शुरू किया था, यहाँ मुनिराज थे, परंतु असंयम की मार्गणा कहाँ शुरू हुई? 33 सागर में। तो 33 सागर पूरे, और यहाँ जब तक संयम प्राप्त नहीं किया तब तक पूरे करोड़ पूर्व नहीं, कुछ कम मैंने वो तीर्थंकर को बनाने उनको। तो तीर्थंकर का तो जो उदय काल है उस भी छोड़ना, यानी 13वें गुणस्थान का बड़ा काल थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। बंधवानी परंतु असंयम ही रखना है। कुछ कम कितना करेंगे? कितना कुछ काल?
अच्छा
पृथक वर्ष, परंतु वो 33 सागर तक बांधने वाला क्या इतने कम में हो जाएगा कि क्या? ऐसा नहीं पड़ा है, फिर कम से कम पृथक वर्ष तक तीर्थंकर रहेगा ही रहेगा। अच्छा कुछ साल हम छोड़ेंगे पीछे लास्ट में, और उसके पहले भी संयम धारण करेंगे कि नहीं? ना पण पृथक तो कुछ फिर भी कह नहीं थी, वहाँ 3 से 9 ऐसा कोई डेफिनेट बताया नहीं है। ये तो हमने ले रहे थे, हमने लिखा पृथक तो वर्ष इतना ही है, 3.5 कहीं लिखा नहीं है, पृथक तो वर्ष इतना ही आता है। ये कैन भी हम कहेंगे, परंतु यथा योग्य समझना भी। तो यहाँ ये बात हमने देखी, यानी असंयमी में 33 सागर वाली बात कुछ अधिक उसमें बना, क्योंकि यहाँ आने पर कुछ काल के बाद संयम भी धारण करेंगे तो उनका असंयम मार्गणा रुक गई। तो इन्होंने ओघ के समान लिख दिया है, क्योंकि ये पहले उन्होंने ओघ में उसकी चर्चा की थी। शेष का जघन्य बंध काल, यानी ये ऊपर जो प्रकृतियां बताई है उनको छोड़कर अन्य प्रकृतियों का जघन्य बंध काल एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त है। शेष मैंने जैसे प्रतिपक्ष प्रकृतियां उनके जो बनती है उसकी अपेक्षा साता असाता आदि की बात उसमें ले लेना। चक्षु दर्शन यानी ज्ञान संयम दर्शन, अभी दर्शन मार्गणा की अपेक्षा बता रहे, चक्षु दर्शन में त्रस पर्याप्तकों का भंग जानना चाहिए। त्रस की बात पहले बताई थी, जो त्रसों में घटित हुआ था वो यहाँ पर भी घटित होगा। विशेष यह है कि सातावेदिनी का जघन्य एक समय उत्कृष्ट अंतर्मूर्त प्रमाण बंद काल है, अचक्षु दर्शन में उगवत है, क्योंकि अचक्षु दर्शन कितने काल तक है, अनादि से चल रहा है, कब तक चलेगा, बारहवें गुणस्थान तक। अचक्षु दर्शन किसको होता है, कौन से इंद्रिय वालों के होता है, चक्षु दर्शन किसके होगा, जो देख सकते हैं, चतुर इंद्रिय और पंचेंद्रिय, तो अचक्षु दर्शन किसके होगा, हाँ तो कौन से इंद्रिय वाले हो गए, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय और तीन इंद्रिय, जिसको चक्षु दर्शन है उसको अचक्षु दर्शन है कि नहीं है, यानी जो देख सकता है उसके स्पर्शन इंद्रिय भी है, रसना इंद्रिय भी, ग्रहण इंद्रिय है ना, यानी कोई ऐसे जीव है कि एक अकेला उसको अचक्षु दर्शन, कौन है, एक इंद्रिय दो इंद्रिय हो गए तीन इंद्रिय तक मात्र अचक्षु दर्शन, और चतुर इंद्रिय पंचेंद्रिय को चक्षु दर्शन भी है अचक्षु दर्शन भी है, वो अचक्षु दर्शन अनादि से लगातार है प्रत्येक जीव को, कब तक चलेगा, बारहवें के अंत तक। तो उसमें सभी जो जहां जो घटित होता है वो सभी वैसे प्रकृतियों में घटित होगा, चक्षु अचक्षु दर्शन। विशेष यह है कि सातावेदिनी का ये हो गया अचक्षु दर्शन में अवगत, यहाँ यह विशेष है कि सातावेदिनी का चक्षु दर्शन के समान भंग है। एक समय की बात जो बात, हाँ क्योंकि क्या है वो चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन वो तो चेंज होता रहता है ना, उसके उपयोग रूप ज्ञान में, वैसे यहाँ उपयोग रूप में नहीं लेते, शक्ति की अपेक्षा ही लेते हैं। अब यहाँ तक तो हमने संयम मार्गणा और दर्शन मार्गणा देखी, अब हम आगे की लेशा मार्गणा देखते हैं। पहले में पहले लेशा क्या है उसको भी देखेंगे, मालूम है तेजल लेशा क्या है, लेशा यानी कलर, तो काहे से कलर हुआ है, तो कहते कषाय उनसे कलर है, क्या कलर है, तो योगों की प्रवृत्ति, उसको कहेंगे कषाय उनसे अनुरंजित योग की प्रवृत्ति। योग की प्रवृत्ति यानी मन वचन काय की जो कुछ क्रिया है वो कषाय के साथ हो रही है, तो उसको कहेंगे वो लेशा, यानी कषाय प्लस योग इज इक्वल टू लेशा हमारी भाषा में। तो उसके छह भेद बताए, मालूम है आपने सुने, कभी सुने होंगे, अभी आपको याद नहीं है। कृष्ण नील कपोत पीत पद्म और शुक्ल, तो कृष्ण नील कपोत ये इसको अशुभ लेशा कहते हैं, पीत पद्म और शुक्ल इसको शुभ लेशा कहते हैं। यहां तक बात ख्याल में, चौथे गुण स्थान तक के जीवों को छह लेशा हो सकता है, ये जनरल अभी गुण स्थानों की बात, मनुष्य तीरंजों की गतियों की बात बाद में करेंगे, पहले गुण स्थानों में देखेंगे, पहले से चौथे तक तो छह लेशा, पांचवे छठे और सातवें के शुभ लेशा होती है, यानी शुभ लेशा वो कौन सी, पीत पद्म शुक्ल पांचवे छठे सातवें। परंतु अगर हम पूछेंगे पीत और पद्म कहाँ होती, तो पहले से लेकर सातवें तक होती, आठवें नौवें दसवें ग्यारहवें बारहवें और तेरहवें वाले को मात्र शुक्ल लेशा है, उन गुणस्थान वालों को मात्र शुक्ल लेशा है, उन तो शुक्ल लेशा कहाँ कहाँ होती पूछेंगे, पहले से लेकर तेरहवें तक, ये तो गुणस्थानों की अपेक्षा उसकी विभाजन उसका होगा। अब थोड़े इंद्रियों की अपेक्षा, पहले गति की बात की ना, गति की अपेक्षा बात करें, देवों में तो अपनी अपनी, नीचे के देवों में पीत लेशा है, बीच वालों के पद्म है, ऊपर शुक्ल लेशा है, हम उसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं। नीचे नरकों में, ऊपर के नरकों में कपोत लेशा, थ्रू आउट पूरे लाइफ में मनुष्य तीरियंचों में कोई भी लेशा अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं टिक पाते, वो चेंज होता रहता है मनुष्य तीरियंचों में, और देवनारकियों में वही लेशा थ्रू आउट लाइफ टाइम तक रहेगी। तो ऊपर के नरकों में कपोत लेशा, बीच वाले तीसरे चौथे वगैरह उसमें नील लेशा, और नीचे छठे सातवें में कृष्ण लेशा, यह इन जनरल इसकी बात है। अभी कहीं अपर्याप्त अवस्था में मिथ्या तो उन स्थानों में अशुभ लेशा होती, वो डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि लेशा का वैसे विस्तार बहुत है। यानी थोड़ी हमें आइडिया आ गई। अब जो एकेंद्रीय जीव है, द्विंद्रिय है, तीनद्रिय है, चतुरिंद्रिय है, उनके तो अशुभ ही लेशा होती है कायम। यानी उसके पीत लेशा भी नहीं होगी, असंगी को हो सकती कभी कभी। अभी हम पढ़ेंगे ये प्रकरण। अभी लेशाओं में बंध का काल हम देख रहे हैं, तो किसी लेशा का उत्कृष्ट काल होगा तो उसमें बंध का काल वैसा बताएंगे। जैसे जो नारकी जो है, सातवें नरक का नारकी, 33 सागर तक तो कृष्ण लेशा है, तो नरक में जो जाता है ना सातवें नरक में, तो यहाँ मनुष्य मरकर गया है, तो मरते समय वहां भी उसकी कृष्ण लेशा थी, वहां गया कृष्ण लेशा में, वहां से मरकर तीर्यंच हुआ, वो भी कृष्ण लेशा में जन्मा। तो ये दो अंतर्मूर्त भी उसमें इंक्लूड करेंगे, ये उस लेशा का उत्कृष्ट काल। शुक्ल लेशा का उत्कृष्ट काल पूछेंगे तो सर्वार सिद्धि में जाने वाले मुनिराज यहाँ शुक्ल लेशा में मरकर वहां गए 11वें गुण स्थान में, हाँ साधिक 33 सागर, आते भी आने के बाद भी एक अंतर्मूर्त के लिए शुक्ल लेशा होगी। पद्म लेशा का उत्कृष्ट काल बीच वाले स्वर्गों की बात करेंगे, पीत लेशा का उत्कृष्ट काल सौधर्म ईशान का उत्कृष्ट, वहां साधिक 2 सागर,
जो लेशा रहती है उसमें मरण होता है।
हाँ, जहाँ जो लेशा है उसी लेशा में, सम्यक दृष्टि तो उसी शुभ लेशा में आकर जन्मे गए। अभी उसमें
मनुष्य में कैसे गए, निरंतर चेंज है
मनुष्य में, यहाँ आने के बाद वो चेंज होते। अभी वहाँ 33 सागर तक कोई किसी के शुक्ल लेशा रहे, मनुष्य में आ गया है, और मनुष्य में आने के बाद अंतर्मूर्त तक तो शुक्ल लेशा रही, फिर चेंज हो गए, पद्म हुई, पीत हुई, कृष्ण लेशा तक पहुंच सकता है। कृष्ण लेशा का अर्थ कुछ मारामारी करना ऐसा नहीं होता, जो कुछ वहां यथायोग्य संकलेश परिणाम है। ये बात ख्याल में, अभी पढ़ेंगे हम, बेसिक कुछ नियम हमने देख लिए, क्योंकि डायरेक्ट बंद काल बताएंगे तो कंफ्यूजन होगा ऐसा क्यों कह रहे हैं, फिर भी जहां बात आएगी वहां देखेंगे। अब यहां कहते कृष्ण नील कापोत लेशा में 5 ज्ञानावरण 9 दर्शनावरण मिथ्यात्व 16 कषाय भयज गुप्सा तेजस कार्मण वर्ण 4 अग्रु लघु उपघात निर्माण तथा 5 अंतरायों का जघन्य बंधकाल अंतर्मूर्त, क्योंकि अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में कृष्ण से नील नील से कपोत वगैरह होते रहते हैं। उत्कृष्ट बंधकाल 33 सागर, अब ये मैंने अभी जो बताया था तो आप कहां के बताएंगे, कृष्ण का जो 33 सागर सातवां नरक, नील के लिए 17 सागर, 22 सागर वाला वो कृष्ण लेशा वाला है, और कपोत के लिए 7 सागर, तीसरे नरक की उत्कृष्ट आयु। हाँ देखो यहाँ क्या लिखा है, सादिक इसलिए कि यहाँ से जाने वाले उसी लेशा में जाते हैं, उसी लेशा में आते हैं, तो सादिक तो कहना पड़ेगा। ऊपर लिखा है देखो, ये जो प्राकृत में 73 पृष्ठ पहली लाइन, उक्कस 33 सत्तारस सत्त सागरम साधिरेयाणी, साधिरेय शब्द डाला है ना ऊपर सादिक, तो यहाँ भी साधिक लिखना चाहिए था। उत्कृष्ट बंधकाल, उसके आगे साधिक शब्द डालेंगे, यानी जाने के पहले भी अंतर्मूर्त तक वही थी, आने पर भी अंतर्मूर्त तक वही लेशा होगी।
सभी मनुष्य भी सभी को ये रोल लागू पड़ता है,
कौन सी
पहले मरेगा तभी।
हाँ देखो मनुष्य में क्या रूल है, यानी मनुष्य मरकर यहाँ आने वाले के लिए यही कंडीशन, मनुष्य मरकर सातवें नरक में गया तो कृष्ण लेशा में मरकर गया, सातवें नरक का नारकी तीर्यंच हुआ कृष्ण लेशा में जन्मा, वहां तो रूल वैसा ही है। देव में जाने वाले के लिए अभी दिखाएंगे, देव में जो गया है तो शुभ लेशा में गया, अभी सम्यक दृष्टि है शुभ लेशा में गया, सौधर्म से लेकर ऊपर जिस लेशा में वहां जाना है उसी लेशा में मरकर वहां चला जाता है। अब भवनत्रिक में जन्मने वाला, वो तो भले यहाँ पीत में मरा है परंतु वहां तो अशुभ लेशा में जन्म लेता है। मिथ्या दृष्टि के लिए थोड़ा अलग रूल है। जैसे ग्रेवेक वाला कोई मिथ्या दृष्टि है, वहां शुक्ल लेशा में मरा। मिथ्या दृष्टि मनुष्य में जन्मते समय अपर्याप्त अवस्था में एक ही समय में उसकी अशुभ लेशा होती है। अदरवाइज नियम क्या है, क्रम से वो शुक्ल से पद्म, पद्म से पीत, पीत से कपोत और कपोत से नील, ऐसा होगा। अभी ये क्रम नहीं रहता। देव मिथ्या दृष्टि हुआ है, मरकर मनुष्य में आया है, तो अशुभ लेशा होकर जन्म लेता है। मनुष्य में आते ही एक ही समय में पलट जाते। इसलिए मैंने ये बात नहीं उठाई थी कि थोड़ी वो तो कन्फ्यूजन या बार बार सुनेंगे तो समझ में आएगी, ऐसी कोई बात नहीं, नहीं समझते हैं। परंतु कोई देव समय दृष्टि है, पीत लेशा में मरे, पद्म मरे या शुक्ल में, उसी लेशा में यहाँ जन्म होगा। मध्य दृष्टि के लिए रूल अलग है। अभी कोई छठे नरक का नारकी कृष्ण लेशा में मरता है, और यदि वहां मरते समय समय दृष्टि है तो कृष्ण लेशा के साथ मनुष्य में जन्मेगा। समय दृष्टि है फिर भी अंतर्मूर्त में चेंज हो जाएगी, परंतु वहां वो कृष्ण लेशा में रहा थ्रू आउट, और जन्म भी यहाँ उसका कृष्ण लेशा में हुआ। वो सम्यक्त्व के साथ आने वाले के लिए, मिथ्यात्व के साथ तो आते ही है, परंतु ये समय दृष्टि के भी वो लेशा तत्काल नहीं बदलेगी विग्रह गति में, जैसे मिथ्या दृष्टि की बदलती है। अभी हम क्या देख रहे हैं, कृष्ण लेशा का उत्कृष्ट काल तो ये ध्रुवबंदी प्रकृतियां हैं, तो उसके वो बनती रहेगी। वहां भी मिथ्या दृष्टि था, यहाँ भी मिथ्या दृष्टि है, तो लगातार बनती है। कितने काल तक, शादी के ने दो अंतर्मूर्त बढ़ाए दोनों ओर, नील के लिए 17 सागर और कपोत के लिए 7 सागर। अब इसी का विशेषार्थ देखेंगे। नील लेशाधारी कोई जीव कृष्ण लेशा युक्त हो, क्योंकि कृष्ण लेशा की बिगिनिंग कैसे हुई, डायरेक्ट कोई शुक्ल वाला पीत वाला कृष्ण में टर्न नहीं हो सकता, तो नील वाला ही कृष्ण में जा सकता, तो पहले नील वाला कृष्ण वाला हो गया। उत्कृष्ट अंतर्मूर्त प्रमाण विश्राम कर मरण करके, यानी मरते समय उसकी कृष्ण लेशा हुई एक अंतर्मूर्त काल तक। सातवी पृथ्वी में 33 सागर प्रमाण कृष्ण लेशा सहित रहा, वहां उसकी कृष्ण ही लेशा होती है। हाँ, उसमें उसके वेरिएशंस होते हैं, उसी में मंदता तीव्रता होती रहती है, परंतु कृष्ण की नील नहीं होती। अकेले कृष्ण लेशा में भी असंख्यात लोक प्रमाण वेरिएशन है, उसमें उसका कम ज्यादा होता रहता है, परंतु कृष्ण का कृष्ण रहेगा।
इसमें तो मनुष्य और तिलिंग की संबंध है ना, क्योंकि इसकी पलटती रहती है,
मनुष्य और तिलिंगों की पलटती है। और सातवें नरक में जाने वाला मनुष्य होगा या मत्स्य होगा, और कोई जाता नहीं है। मनुष्य ये वज्रोषण नारा सहने वाले मनुष्य है, या कोई वो महामत्स्य वगैरह जो है वज्रषभ नारायण सहने वाले है, वो तंदुर मत्स्य भी जा सकता है। मालूम है कि नहीं, तंदुर मत्स्य की स्टोरी नहीं सुनी आपने? अच्छा सुनो नहीं तो क्या है, अपने बंद बंद सुनकर आपको वो बहन कहेगी कहाँ लाया हमको तो महामत्स्य तो नाम सुना है आपने, वो स्वयं ब्रह्मण समुद्र कितना बड़ा है, और उसमें हाँ तो उसमें बहुत बड़े बड़े मत्स्य होते हैं। कितने बड़े, तो 1000 योजन ऐसा लंबा, 500 योजन ऐसा, और 250 योजन ऐसा हाइट वाला। हाँ, एक योजन कितना होता है भाई? एक योजन, हाँ ये महायोजन है। ऑर्डिनरी 4 कोस है, परंतु ये 500 गुणा ने 4 × 500 2000 कोस, यानी 4000 माइल का एक योजन। यहाँ से अमेरिका कितना माइल है? 10000 माइल, यानी कितने हुए 4000 माइल का एक योजन होता है, यानी 2.5 योजन है अमेरिका यहाँ से दूर है। और वो महायोजन कितना लंबा है? 1000 योजन, यू कैन इमेजिन। आपको जितनी पृथ्वी मालूम है ना, वो तो उसका पिल्लू होगा कोई छोटा तो इतने बड़े बड़े ने 12.5 करोड़ घन योजन इतनी उसकी पूरी अवगाहना है उसका वॉल्यूम घनफल। तो ऐसे जो बड़े बड़े मत्स्य होते हैं तो उनके शरीर के आधार से, जैसे हमारे कोई कान के पीछे होगा, कोई इधर किधर कोई, या इधर कोई छोटा जीवाणु बैठा होगा ना, तो वहाँ छोटी छोटी मछलियाँ तो उनके शरीर के आधार से वहाँ बैठी रहती है।
नहीं,
वो भी छोटे होते हैं, उसको तंदुल मत्स्य कहा है। और वो क्या देखता है, ये तो मत्स्य ऐसे आ करके सो गया। हम यहाँ देखते कोई खराटे मारता है तो अंदर चला जाती हवा बाहर निकलती, वहां तो क्या होता है, तो मुंह खुला है तो पानी के प्रवाह के साथ सैकड़ों मछलियां अंदर चली जाती है और फिर बाहर चली आती है। तो क्या सोचता रहता है, सोचता रहता है, अरे क्या मूर्ख है, मैं होता तो मुंह बंद कर लेता और सबको खा जाता। उसको ना इतनी खाने की कैपेसिटी है और ना ही उसमें कोई ऐसे पावर है, फिर भी परिणाम बैठे बैठे क्या करता है कि मैं होता तो इस सबको खा जाता। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वो सातवें नरक में जाता है। तो ये परिणामों का फल मिलता है जीवों को, हम भी। हाँ है ना, हमारे ऐसे है ना, क्या करते है,
मैं अमेरिका में होता तो ये
ऐसा करता है,
यहाँ बैठे बैठे। और अमेरिका वाले अमेरिका छोड़ के हिंदुस्तान आना,
वहाँ तो बहुत सारे लोग स्वाध्याय करते हैं और वहाँ बहुत सारा फुर्सत ही फुर्सत है, वहाँ क्या है जो करना चाहता है उसको बहुत है कि नहीं बहन, बोलो आप ही बोलो। यहाँ तो हमारा टाइम किस में चला जाता है, आज इसको मिलना कल उसको मिलना, क्यों, चलो चलो। तो यहाँ क्या हो रही है,
वो ऐसा तंदुर मच्छर सातवें नरक में
जाता है, यानी वो परिणामों के कारण। देखो यहाँ भी हम क्या करते, टीवी शो देखते हैं, है ना, वहाँ कोई सीरियल चलती है और कोई पुलिस चल रहा है और भाग रहा है, वो चोर पुलिस के हाथ में पिस्तौल है, तो यहाँ क्या मार, अरे मारना गोली, कौन कह रहे, उसको नहीं मारने के पैसे मिल रहे। और हम यहाँ मार कहकर वो उसकी हिंसा की अनुमोदना कर रहे हैं या उपदेश दे रहे हैं उसको, तो आपकी सुनने वाला तो है ही नहीं है, फिर भी कर्म का बंध तो जरूर होता है। वो ड्रामा है परंतु यहाँ रियलिटी में परिणाम हो रहे हैं, वो ड्रामा कर रहा है, मैंने वही तो, इसको ड्रामा करने के पैसे मिल रहे हैं। फिर भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, ड्रामा तरीके नहीं देख रहे उसको, ड्रामा तरीके देखते तो क्या बताने की जरूरत है, उसको मालूम है, अरे डायरेक्टर ने बताया वो कर रहा है समझ में, ड्रामा देखते तो क्या होने वाला है, तो देखते ये क्या करेगा, मारेगा कि नहीं मारेगा, इतने तो हम अलूप होकर तो देखते नहीं है
बिल्कुल। हम ऐसा देखते हैं, माँ है उसको बच्चा घर से बाहर निकालता है, खाना नहीं देता है, तो नहीं देता है, तो अपने को रोना आता है, हम तो देख रहे हैं नाटक,
तो नाटक है तो रोना क्यों आता है,
यहाँ पे रोना आता है, उसको बहुत ही ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो वी आर इन्वॉल्व इन
रियलिटी में भी ऐसा करते हैं कि हम किसी के साथ जुड़े नहीं है, तो भी होता है
वही, तो यही तो ये रागद्वेष हो रहे हैं ना, उसमें जो परिणाम है उसका फल मिलता है। आपने कुछ किया नहीं फिर भी शुभ भाव दे, अब उल्टा भी देखो, अब ये बात तो हिंसा की छोड़ दो, करना है इसमें अपने प्रथमान युग में कहानी है, कोई तिरियंच है और वो क्या देख रहे कि कोई श्रावक मुनिराज को आहार दान दे रहे, तो उनको अंदर से इतना प्रमोद आता है कि उसके लिए उनके जिसको कहेंगे अनुमोदना के भाव, और वो तो वहां तो सत्पात्र दान हो रहा है, और इन तीरियंचों की आयु बनती है तो भोगभूमि के तीरियंच होते हैं, तीन पल्ले वाले उत्तम भोगभूमि में जाके जन्मते हैं। हाँ, आदिनाथ भगवान के उसमें था ना, चार जानवर थे और उन सबको वहां की आयु बंधी, उनके पूर्व भोग के कथन में था। तो ऐसा होता है, परिणामों के फल मिलते हैं, ये परिणामों से बंध होते हैं। तो कौन से परिणाम करना अच्छा, शुभ भाव करना अच्छा कि नहीं,
शुभ
भाव
भी करना
अच्छा। हाँ बहुत अच्छा, अच्छा। अभिप्राय में तो ये लेना है कि शुभ भाव भी बंध के कारण है, ये बनते हैं, ये हमारा उसका हम ज्ञान कर रहे हैं, शुभ भाव करना चाहिए, तीर्थंकर प्रकृति बांधना चाहिए, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। अभिप्राय में हमने अगर बांधना चाहिए ऐसा कहीं अंदर, कहीं अंदर सूक्ष्म भाव भी पड़ा है तो उसका फल है ये, तो वो तो मिथ्यात्व है, मान्यता की विपरीत है। ये तो ज्ञान का विषय है कि कौन से परिणामों से कौन सा बंध होता है, लगातार कहाँ कितना बंध हो सकता है, ये ज्ञान का विषय है। और यहाँ हम जान रहे हैं और ये नाटक भी नहीं, ये तो रियलिटी है। और यहाँ हमारे कोई राग द्वेष नहीं हो रहे, बिल्कुल ज्ञान का उपयोग इसमें जिसको हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, कौन आने वाला है जाने वाला है उसमें कोई हमें कुछ याद नहीं अभी, यहाँ उपयोग की सूक्ष्मता है और मंद राग सहित मंद कषाय सहित हमारा चल रहा है, तो ये बहुत कार्यकारी बताए, सभी अनुयोग कार्यकारी। इसकी विशेषता क्या है, उपयोग को अत्यंत सूक्ष्म किया जाता है, होता है, किया जाता है, करने धरने की बात नहीं है, वो सहज हो जाता है। तो यहाँ हम देख रहे थे बात, विशेष अर्थ देख रहे थे, नील लेशाधारी कोई जीव कृष्ण लेशा युक्त होकर उत्कृष्ट अंतर्मूर्त प्रमाण विश्राम करे ने उसमें रहकर मरण करके सातवीं पृथ्वी में यानी सातवें नरक में 33 सागर प्रमाण कृष्ण लेशा सहित रहा, वहां की एक ही लेशा होती है थ्रू आउट, मरण कर अंतर्मूर्त काल पर्यंत भावनावश वही लेशा रही, ऐसा नियम है, वहां से आया है तो वही लेशा अंतर्मूर्त तक रहेगी। इस कारण दो अंतर्मूर्तों से अधिक, वहां जाने के पहले और आने के बाद दो अंतर्मूर्तों से अधिक 33 सागरोपम कृष्ण लेशा का उत्कृष्ट काल रहा। अब यहाँ जो मिथ्यात्वादी जो कहा है ना, यहाँ जो ध्रुवबंदी प्रकृतियां वहां मिथ्या दृष्टि था थ्रू आउट, तो ये सभी बंद ही रहती कंटिन्यूअस में। हमारा क्राइटेरिया है कृष्ण लेशा, तो ये 33 सागर और दो अंतर्मूर्त लगातार ये कृष्ण लेशा में रहा और लगातार इनका बंद करता रहा। अन्य प्रकृतियां भी बांधता रहा परंतु उसमें तो अंतर्मूर्त का कभी साता कभी असाता, ये ध्रुवबंदी वाली की बात। इसी प्रकार पांचवी पृथ्वी में उत्पत्ति की अपेक्षा नील लेशा में साधिक 17 सागर, ये साधिक 17 इसीलिए कहा, वहां जाने के पहले और आने के पश्चात दो अंतर्मूर्त बढ़ा देना, तथा तीसरे नरक की अपेक्षा कापोतलेशा में साधिक 7 सागर प्रमाण बंद काल कहा है, वहां की उत्कृष्ट आयु है 7 सागर। अब ये तो ध्रुवबंदी की उसके बारे में बात हो गई। अब कहते हैं साता असाता वेदियां, इसका बंध तो चेंज ऐसा ही होता रहता है, कभी साता कभी असाता, कभी साता कभी असाता होती रहेगी, और एक समय में भी चेंज हो सकता है। तो जघन्य भी एक समय ऐसा भी लेना कि लेशा का मान लेते ना, यहाँ इतना लेशा का काल, फिर ये लेशा का यहाँ साता का बंध होता तो यहाँ रुक गया, कृष्ण लेशा एक समय बाकी थी, असाता का बंध शुरू हुआ और वो नील हो गया, ऐसा भी हो सकेगा, तो एक समय भी घटित होगा उसमें, परंतु अधिक तो अधिक अंतर्मूर्त होगा। 6 नौकषाय, ये 6 नौकषाय कौन से है, वह जुगुप्सा को हमने ध्रुवबंदी में लिया, हास्यरति या शोकरति ये 4, और स्त्री वेद और नपुसक वेद के, पुरुष वेद की बात अलग करेंगे तो नपुसक वेद। दो गति, अब ये अशुभ लेशाओं में बांध रहे हैं, हाँ तो दो गति, क्योंकि मनुष्य गति और देव गति की बात बाद में करेंगे, वो कंटिन्यूस बनती है ना, किसी समय दृष्टि नारकी है अशुभ लेशा में है तो मनुष्य गति बांधेगा, और मनुष्य तीर्यंच समय दृष्टि है कंटिन्यूस देव गति बांधेगा। अब यहाँ कौन सी रही, तीर्यंच गति और नरक गति, तो 4 जाति, ये 4 जाति कौन सी है, हाँ अश्विन भाई 4 जाति कौन सी है, चतुरिंद्रिय जाति, वैक्रियक शरीर 5 संस्थान, वैक्रियक अंगोपांग 5 सहनन, तो अनुपूर्वी, जो गति दी न वही अनुपूर्वी। आतप उद्योत अप्रशस्त विहाय गति, स्थावर आदि चतुष्क यानी स्थावर अन्य सूक्ष्म पर्याप्त साधारण, स्थिर आदि दो युगल, स्थिर अस्थिर और शुभ अशुभ, दुर्भग दुस्वर अनादेय का जघन्य बंध काल एक समय, क्योंकि एक समय में ये चेंज हो सकता है, और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त काल है पुरुष वेद, मनुष्य गति, अशुभ लेशाओं की बात चल रही थी ना यहाँ पर, कृष्ण नील कपोत में अपनी अपनी अलग अलग, पुरुष वेद मनुष्य गति समचतुरस्य संस्थान वज्र ऋषभ नाराज सहनन मनुष्यानुपूर्वी प्रशस्त विहाय गति, सुभग सुस्वर आदेय और उच्च गोत्र का बंध काल जघन्य से एक समय, जैसे अन्य प्रकृतियों में है वैसे जघन्य से एक समय, और उत्कृष्ट से देशों न 33 सागर, वहां बंध वो जो ध्रुव प्रकृति उनका साधिक में लिया था, अब यहाँ क्या लेना कुछ कम 33, क्यों ये लगातार किसके बंधेगी सम्यक दृष्टि को, कृष्ण लेशा वाला सम्यक दृष्टि यानी वहां तो सम्यक्त के साथ कोई सातवें नरक में नहीं जाएगा, तो वहां गया और बाद में सम्यक्त प्राप्त किया, पहले पर्याप्ति पूरी हुई फिर विशुद्धि हुई फिर सम्यक्त का और एक अंतर्मूर्त, तीन अंतर्मूर्त तो वहां चलेगा, और लास्ट में भी मिथ्यात्व में जाके मरेगा, तो वहां पर भी तीन अंतर्मूर्त घटा था, तो ये कुछ कम 33 सागर हो गया, ये ख्याल में आई बात। तो देशों ने इन्हें देश उन्हें कुछ कम, फिर कुछ कम 17 सागर, वहां भी सम्यक्तों के साथ कोई पैदा नहीं होता नीलेशा में नीचे नरक में, और तथा कुछ कम 7 सागर। अब इसी का विशेषार्थ बता रहे कि ये क्यों कहा इतना, कोई 28 मुनि की सत्ता युक्त मिथ्यात्वी जीव, तेजल 28 की सत्ता वही मालूम नहीं ना, उसको हम देखेंगे, मुनि ने दर्शन मुनि और चारित्र मुनि, दर्शन मुनि की कौन सी प्रकृतियां होती है मंजुबेन, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, इसमें जो अनादि से मिथ्या दृष्टि है उसकी कितनी प्रकृति होगी, इन तीन में से एक मिथ्यात्व है, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति कब तैयार होती, जब सम्यक दृष्टि होता है तब तैयार होती, वापस वो जो मिथ्यात्व में आता है तो भी बनी रहती है, तो दर्शन मुनि की तीन हो, चारित्र मुनि की 16 कषाय और 9 कषाय, 16 9 25 हो गए, तो जो अनादि मिथ्या दृष्टि है उसके एक मिथ्यात्व और 25 कषाय, यानी वो 26 की सत्ता है, मुनि की 26 प्रकृतियों की सत्ता होती है। अब जिसने एक बार सम्यक तो प्राप्त किया है और फिर मिथ्यात्व में गया है, और उसके भी वो दो प्रकृतियां है सत्ता में, कुछ काल तक रहती है असंख्यात वर्षों तक, तो उसकी कितनी प्रकृतियां हुई टोटल 25 और 3 28, तो उसको कहेंगे सादी मिथ्या दृष्टि, 28 की सत्ता वाला सादी मिथ्या दृष्टि, क्योंकि जिसकी ऐसी 28 की सत्ता है तो मिथ्या तो में नरक में गया है, अब वो जल्दी से जल्दी वहां सम्यक क्षोभम सम्यक तो प्राप्त कर सकते, दूसरे भी प्रथमोक्षम सम्यक तो प्राप्त करते हैं परंतु उसको जरा लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि वो सब 5 लब्धि वगैरह करण लब्धि उसमें टाइम ज्यादा जाता है, इसके जल्दी हो सकते हैं क्योंकि हमको बीच वाला काल बढ़ाना है ना, इसलिए इसको जल्दी प्राप्त कराना है। तो कोई 28 ये समझ में आई थे, 28 मुनि की सत्ता युक्त मिथ्यात्वी जीव तीसरी पांचवी तथा सातवीं पृथ्वी में उत्पन्न हुआ, तीसरी कपोत लेशा के लिए, पांचवी नील लेशा के लिए लिया और सातवीं कृष्ण लेशा के लिए, वहां पर्याप्ति पूर्ण करके, ये कहीं पर जन्म लेता है, अभी पंचेंद्रिय तो 6 पर्याप्ति होती है, यानी वहां जो जीव के जो कुछ विशिष्ट शक्तियों की पूर्णता होती है, दूसरे अंतर्मूर्त में विश्राम लिया यानी वहां अन्य कुछ कार्य नहीं किया, तथा तीसरे में विशुद्ध होकर यानी उसकी विशुद्धि बढ़ी, क्योंकि सम्यक्त्व होना है तो उसके पहले कषायों की मंदता होती चली जाती, नील लेशा पलटकर कपोत नहीं होगी, नील की नील रहेगी, परंतु उसमें वो अनुभाग जो तीव्रता थी वो कम हो जाएगी, तो उसको वो विशुद्ध हुआ। चौथे अंतर्मुहूर्त में वेदक सम्यक तो धारण किया, वेदक कहो या क्षोभम सम्यक तो कहो एक ही बात। और तीन अंतर्मुहूर्त लिए, एक अंतर्मुहूर्त पर्याप्ति पूर्ण करने के लिए, बीच में एक अंतर्मुहूर्त विश्राम किया, फिर एक अंतर्मुहूर्त में विशुद्धि होकर फिर सम्यक तो प्राप्त किया। यानी चौथे अंतर्मुहूर्त में तो सम्यक तो हो गया उसको। हम तीसरी तथा पांचवी पृथ्वी में सात तथा सत्रह सागर प्रमाण क्रमशः पुरुष वेदादि का बंद किया, क्यों सम्यक दृष्टि रहा ना, तो कंटिन्यूस अभी उसको ऊपर जो हमने लिस्ट देखी थी पुरुष वेद मनुष्य गति समय चतुर्थ संस्थान वगैरह ऊपर से दूसरे पैराग्राफ में उन प्रकृतियों का बंद किया, पश्चात सम्यक के साथ ही मरण किया, इसलिए इन दो को अलग निकाला। यहाँ लिखा ना तीसरी और पांचवी पृथ्वी में, तीसरी में सात सागर और पांचवी में सत्रह सागर, तो सम्यक दृष्टि मरण तक सम्यक दृष्टि ही रहा, तो मरण तक वही बंद किया, पश्चात मरण किया। अतः सात तथा सत्रह सागर में मिथ्यात्व दशा के तीन अंतर्मुहूर्त कम होते, क्योंकि मिथ्यात्व में जन्मा था तो वहां जन्मने के समय से लेकर तीन अंतर्मुहूर्त वहां कम हुए उसके, बाकी समय दृष्टि रहा। सातवें नरक के लिए पहले भी अंतर्मुहूर्त और फिर लास्ट में भी अंतर्मुहूर्त घटा देना, क्योंकि मिथ्यात्व तो में ही जाकर नियम से वहां आयु बंद होता है और बाद में उसका मरण हो जाता है। अब वो बात यहां बताएंगे। सातवीं पृथ्वी में छह अंतर्मुहूर्त कम होते हैं, कारण वहां से मिथ्यात्व के बिना निर्गमन नहीं होता। सातवें नरक का ऐसा रूल है कि वहां जाने के बाद कोई जीव सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर सकता है। तीन अंतर्मुहूर्त में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, थ्रू आउट सम्यक दृष्टि रहा 33 सागर का बहुतांश समय, और फिर मरण समय नजदीक आया है तो मिथ्यात्व में जाएगा, एक अंतर्मुहूर्त के बाद आयु का बंद करेगा, फिर एक अंतर्मुहूर्त विश्राम करके फिर मरेगा, ये नियम है वहां का। यही कहते हैं मिथ्या, यानी वहां कोई सासागन में भी नहीं मर सकता, मिथ्या तो में ही नियम से मरण है वहां पर, निर्गमन यानी वहां से निकलना नहीं होता, एग्जिट। हाँ, सातवें नरक का नारकी थ्रू आउट समय दृष्टि रहा है फिर भी मरण के पूर्व मिथ्या तो में आ जाता, मरण के अंतर एक अंतर्मुहूर्त शेष रहने पर मिथ्यात्व गुणस्थान को प्राप्त हुआ, दूसरे अंतर्मुहूर्त में आयु बंद किया, क्योंकि मिथ्यात्व में जाकर ही आयु बंद होगा इसका, तीसरे में विश्राम किया, क्योंकि आयु बंद होते ही मरण किसी का नहीं होता, आयु बंद समाप्त हुआ फिर थोड़ा काल चला जाएगा अंतर्मुहूर्त फिर मरण होगा, बाद में निर्गमन किया। इस प्रकार पूर्व के तीन और पश्चात के तीन, इस प्रकार छह अंतर्मुहूर्त कम 33 सागर प्रमाण बंध काल है, यानी ये जो कंटिन्यूस बंधने वाली समय दृष्टि को जो प्रकृतियां है, जब तक वो समय दृष्टि रहा तब तक उसका हम यहाँ लेशा की अपेक्षा बात कर रहे हैं, यही बात हमने नरक की अपेक्षा भी देखी, पर यहाँ हम लेशा की बात देखें। अब चार आयु का जघन्य तथा उत्कृष्ट बंध काल अंतर्मुहूर्त प्रमाण है, कभी भी आयु बनती है तो कम से कम वो भी छोटा अंतर्मुहूर्त है, किसी के लंबे काल तक बंधेगी तो भी अंतर्मुहूर्त है। अब लेशाओं में गति का बंध है, तिर्यंच गति पंचेंद्रिय जाति ऊपर लिया, ओ तो वहां कौन सी गति लेनी थी, कृष्ण लेशा में देवगति, यहाँ क्या बताना चाहते हैं देखें। यह उत्कृष्ट काल के लिए ये 33 सागर लिया है और वहाँ पर नहीं यहाँ लेशाओं की बात चल रही है अपनी। वहाँ जघन्य एक समय उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त काल, हमने दो गति की बात देखी थी वहाँ ऊपर। बाद में मनुष्य गति देखी और अभी यहाँ पर आगे देव गति का वर्णन कैसे करेंगे अशुभ लेशा वाले। देखो यहाँ क्या बात है, ये तो बीच वाला विशेषार्थ हो गया। ऊपर से हम जो बात चल रही थी पुरुष वेद वगैरह की बात की थी, फिर चार आयु की बात की, अब यहाँ तीर्यंच गति की कर रहे हैं। विशेष है कि तीर्यंच गति त्रिका नील कपोतलेशा में सातावेदनी के बांधी बंध काल समझना चाहिए, ये आप बात यहाँ लिखी है। तीर्यंच गति त्रिक की बात आगे बताई उन्होंने फिर दोबारा, यानी वो हमने लिया था वो बराबर है, इसको पढ़ेंगे ख्याल में आएंगे। यानी यहाँ क्या बताना चाहते हैं, अशुभ लेशा है, एक कृष्ण लेशा है, उसमें लगातार तीर्यंच गति का ही बंध कर रहा है, ऐसा कौन होगा? सातवें नरक का मिथ्या दृष्टि, क्योंकि जब तक मिथ्यात्व में है तीर्यंच गति का ही बंध कर रहा है, समय दृष्टि हो जाए तो मनुष्य गति का बंध करता। तो यहाँ क्या लिखे देखो, तीर्यंच गति पंचेन्द्रिय जाति, वो भी पंचेन्द्रिय की जाति का ही बंद कर रहा है, औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग तीर्यंचानुपूर्वी परघात उच्छ्वास त्रसचार तथा नीच गोत्र का जघन्य एक समय, ये तो कोई भी कर सकता है ना, उसके लिए नरक का ही लेना चाहिए ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी अशुभ लेशा वाला लेना है। उत्कृष्ट साधिक 33 सागर है, 17 सागर है तथा 7 सागर है, यानी वहां से आने के बाद भी उसने तीर्यंच गति बांधी, मिथ्या दृष्टि है। देखो नरक में 33 सागर तक कृष्ण लेशा रही, वहां से निकला तो कृष्ण लेशा में जन्म लिया, कहां गया वो तीर्यंच में गया, उस तीर्यंच ने तीर्यंच गति बांधी अपर्याप्त अवस्था में, तो उसका साधिक हो जाएगा, तो साधिक 33 सागर, वैसे साधिक 17 सागर, साधिक 7 सागर। तीर्यंच में नहीं, तीर्यंच गति के लिए वो नहीं लेना, पंचेन्द्रिय जाति के लिए लेना, क्योंकि वो मनुष्य गति या तीर्यंच गति बांध रहा है, मिथ्यात्व के लिए भी ऑप्शन है तीर्यंच या मनुष्य गति, परंतु कुछ भी गति बांधे तो औदारिक शरीर तो बांध ही रहा है, पंचेन्द्रिय जाति बांध ही रहा है, तो ये गति के लिए वो ऑप्शन वो बाद में दूसरे वाक्य में बता रहे। यानी तीर्यंच का बंद करे या मनुष्य का करे, औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग ये तो बांध रहे, पंचेन्द्रिय जाति का ही बंद कर रहे और वो पर्याप्त है तो परघात उच्छ्वास को भी बांध रहे है ना। तो यहाँ क्या लिखा, विशेष यह है कि आगे के पेज पर 74 पर तीर्यंच गति त्रिक का गति त्रिक यानी तीर्यंच गति तीर्यंच गत्यानुपूर्वी और नीच गोत्र नील तथा कपोतलेशा में सातावेदनी की भांति बंध का समझना चाहिए। हाँ अंतर्मुहूर्त तक है ना, ये आगे उन्होंने क्लियर किया। अब कृष्ण नील लेशा में तीर्थंकर प्रकृति का बंध का एक कृष्ण नील लेशा वाले तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेंगे कि नहीं करेंगे? इसमें लिखा है तो करेंगे, बहुत अच्छा। ऐसा ही सोचना है, क्योंकि ये कैसा हो सकता है ऐसा नहीं सोचना। यहाँ लिखा है तो ये कैसे घटित होगा ये हमें वो हमेशा ये कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा अर्जुन भाई को सोचते हैं। और इन्होंने क्या बताया, यहाँ लिखा है तो ये सत्य है, तो हमें ऐसा सोचना है कि ये लिखा तो है तो ये कैसे होगा, तो हम उस यानी ये सत्य है पकड़कर हम उसको सोचते हैं। तो देखो कोई सर्वार सिद्धि वाला भी जे वहां शुक्ल लेशा में रहो यहाँ आगे, तो अंतर्मूर्त में लेशा चेंज होती रहती है चौथे गुण स्थान तक। तो कभी कृष्ण हुआ, कभी नील हुआ, कभी कपत हुआ, कितने समय तक? अंतर्मूर्त तक। यहाँ तो कंटिन्यूस कोई भी लेशा नहीं रहती, हमेशा ही चेंज होती रहती। हम आपकी भी एक ही लेशा में जीव अंतर्मूर्त से अधिक नहीं रह सकता। तो यहाँ क्या लिखा है, तीर्थंकर प्रकृति का जघन्य और उत्कृष्ट बंध का अंतर्मूर्त है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति तो कंटिन्यूस बंध रही थी जब तक वो कृष्ण लेशा में आए अंतर्मूर्त तक, तब उसका बंध चल रहा है, फिर वो कृष्ण से नील हो जाएगा, नील से कपोत हो जाएगा, तो ये तो चेंज होते ही रहे, तो अंतर्मूर्त घटित होता है। कपोत लेशा में, अभी कृष्ण जी को अलग लिया, कपोत लेशा में जगन्य बंध काल अंतर्मूर्त, जैसे हमने यहाँ मनुष्य में आया है कृष्ण नील में देखे है, वैसे कपोत लेशा में अंतर्मूर्त रहा तो जगन्य बंध काल तो अंतर्मूर्त, पर अभी हमें कपोत का उत्कृष्ट काल देखना है। मंजू बेन आप बताएंगे, कपोत लेशा में तीर्थंकर प्रकृति लगातार बांध रहा है उत्कृष्ट काल तक, वो कितना होगा? कृष्ण नील में तो अंतर्मूर्त बताया, उत्कृष्ट भी
पहले नरक,
बहुत अच्छा पहले नरक। हाँ, तो पहले नरक का उत्कृष्ट
बांधा और
हाँ, यहाँ कपोत में मरा तो यहाँ भी बांधा, वो क्षयिक समय दृष्टि करके हम भेजेंगे, तो यहाँ भी कपोत लेशा में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो रहा था, वहाँ कितनी लेनी उत्कृष्ट आयु। कितने? तीन। तीन सागर वाला है वो तो बीच में मिथ्या तो में चला जाता है ना, और वहाँ की कपोत लेशा। हाँ देखो यहाँ साधिक तीन सागर, दूसरे में भी साधिक तीन सागर देखा था ना, तीसरे नरक में साधिक तीन सागर जघन्य भी और उत्कृष्ट भी देखा। नहीं नहीं, वो अंतर्मूर्त यहाँ की आयु कम है ना, सागर से कम है, तो कंटिन्यूस ज्यादा नहीं, वहाँ की वहाँ जाने के बाद शुरू करना ऐसा लिया, पहले नरक वाले को नहीं पकड़ा उन्होंने, वहाँ का लिया है। वहाँ जब शुरू किया ना पर्याप्ति यानी दूसरी पर्याप्ति के बाद, तब उनका शुरू कर दिया, यानी समय के साथ जाने वाले की नहीं बात की। वहाँ तीसरे नरक में भी जो जघन्य वहाँ उत्कृष्ट अंश है कपूत का, वहाँ ले लिया। सागर से कम, आप वो चाहते थे, पूरे सागर नहीं होती, 84,000 तो मिनिमम मिनिमम सम्यक दृष्टि की मिनिमम आयु सैनिक राजा की थी ना, और मैक्सिमम कितनी होती है सम्यक दृष्टि अगर वहां जाता है तो सागर से कम होती है, पूरे सागर तक नहीं रहता।
तो
यहाँ तीसरे हाँ तीसरे नरक में लेंगे।
तीर्थंकर प्रकृति सम्यक दृष्टि जीवी
बांधता है, हाँ ये नियम है, और वो तो सम्यक तो ही रहता है, एक्सेप्ट जिसने नरक का ये बांधी है और दूसरे तीसरे नरक में जाने वाले हैं, उसका सम्यक तो छूट जाता है एक अंतर्मूर्त के लिए, और वहां जाते ही एक अंतर्मूर्त में प्राप्त कर लेता है, उतने काल तक तीर्थंकर प्रकृति नहीं बांधी, फिर थ्रू आउट ये साधिक तीन सागर तक तो बांधी रहा है। चलो अभी यही रुकेंगे हम, तेजो लेशा की बात कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नो सदा देखो